रोमियो 12:3। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबोध के साथ अपने आप को समझे। तो फिर किस प्रकार के स्वर्गीय निवास स्थान उनके लिए तैयार है जो दूसरे विश्वास के स्तर पर है? इब्रानियों 12:14 कहता है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोज हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। पहले विश्वास के स्तर पर होकर आपका शर्मनाक उद्धार होगा, दूसरे स्तर पर आप पहले स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। प्रिय श्रोताओं और टेलीविजन पर देख रहे दर्शकों, यदि आप वास्तविकता में परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, बाइबल पर और स्वर्ग में विश्वास करते हैं, और साथ ही साथ यदि आप नई यरूशलेम के बारे में जानते हैं और विश्वास करते हैं, तो किस प्रकार का मसीह जीवन हमें जीना चाहिए? यदि आप केवल पालन करें जब आप सुनते हैं, तो आप तेजी से तीसरे विश्वास के स्तर में जा सकते हैं, यद्यपि आप नए ही विश्वासी क्यों ना हो, और साथ ही तीसरे स्तर से आप तेजी से चौथे स्तर में जाएंगे। जब मैंने एक पास्टर से या किसी से भी क्यों ना सुना, यहां तक कि जब मैं तीसरे विश्वास के स्तर पर था, मैंने अपने विचारों का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने केवल आमीन कहा और जो कुछ उन्होंने कहा विश्वास किया। यदि वह भलाई थी और परमेश्वर का वचन था, मैंने सब कुछ का पालन किया, इसलिए मैं तीसरे स्तर को बहुत तेजी से पार कर पाया। इसलिए वह समय की अवधि जिसके दौरान मैं पहले और दूसरे विश्वास के स्तर में था वो बहुत छोटी अवधि थी, और मैंने तेजी से तीसरे स्तर को भी पार कर दिया और चौथे स्तर में प्रवेश किया। और जिस दिन से मैं चौथे स्तर में आया, आशीषें मुझ पर आना शुरू हो गई। ये वो दिन था या अगला दिन था? इसलिए मैं अपना तमाम कर्ज चुका पाया जो मुझ पर 7 सालों से था जब मैं बीमार बिस्तर पर था, और तब के बाद मैं गरीबों की मदद कर पाया। हमारे चर्च में भी ऐसे सदस्य है, यदि परमेश्वर कुछ पसंद नहीं करता वे उसे उसी वक्त त्याग देते हैं, और यदि परमेश्वर किसी से प्रेम रखता है तो वो अपना मन बनाते हैं कि वो इसे करें और बिना मन के बदलाव के उसका अभ्यास करें। वे लोग तेजी से विश्वास के दूसरे स्तर से आगे निकल सकते हैं और तीसरे विश्वास के स्तर में आ सकते हैं। परमेश्वर आपसे आनंदित होगा और सब बातों में आपके साथ रहेगा, ताकि आप हमेशा परमेश्वर के कार्यों की गवाही दे पाए पवित्र आत्मा की परिपूर्णता के साथ। मेरे बड़े भाई इस सभा में यहाँ पर शामिल है, और साथ ही साथ क्वांजू में मेरे सबसे बड़े भाई वो भी उसी सभा में शामिल है, क्वांजू मानमिन कलिसिया में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मुझे शराब पीना बहुत पसंद था। मैं एक दिन भी बिना शराब पिए नहीं रह सकता था। दिन के समय में भी मैं पीता था, और अंत में मैं एक शराबी बन गया। मैं 10 सिगरेट एक दिन में पीता था, और हर दिन मुझे शराब पीनी होती थी, यद्यपि मैं एक शराबी भी था। परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद मैं तुरंत उसे छोड़ पाया। हमारे कभी कभार जन्मदिन होते हैं, समारोह होते हैं, उस वक्त हम भाई इकट्ठे हुआ करते थे और वहां पर वो शराब पीना शुरू करते थे। यहां तक कि वो मुझे भी पीने को कहते थे, तो मैं पीता नहीं था और ना ही मैं उन्हें शराब देता था। सबसे पहले तो वे थोड़े से निराश हुए, थोड़ा सा पहले मुझे उसके लिए सताव झेलना पड़ा, लेकिन जो भी है, जब मैंने परमेश्वर का वचन सुना मैंने उसे छोड़ दिया। विश्राम दिन के साथ भी ऐसा ही था, प्रभु को ग्रहण किए लंबा समय नहीं हुआ था, तो मेरी माँ ने भी अपनी तमाम मूर्तियां निकाल फेंकी। जैसे ही उसे पता चला कि मैं चर्च में चंगा हुआ हूँ, वो बहुत खुश हुई और वो तुरंत चर्च में आना शुरू हो गई। हालांकि चर्च बहुत दूर था और वो 70 साल से भी ऊपर की थी। एक दिन वो सियोल आई अपने बच्चों के आमंत्रण पर। तमाम मेरे 6 भाई और बहन और उनके बच्चे, वे एकत्र होते थे और पार्क में जाते थे। वे अपने पास लंच बॉक्स पैक करते थे और पिकनिक पर चले जाते थे। तो भी मैंने उनके साथ जाना रविवार को इनकार कर दिया। मैंने उन्हें कहा कि मुझे चर्च जाना है रविवार को परमेश्वर के वचन के अनुसार। मैंने उन्हें कहा कि उन्हें कोई और दिन चुनना होगा रविवार के अलावा, क्योंकि मैं रविवार को कुछ और नहीं कर सकता था। जब मैं एक नया विश्वासी था, मैं नहीं जानता था कि अच्छे से कैसे बात की जाए, इसलिए मैंने केवल इनकार कर दिया। यहां तक कि जब मेरी प्रिय माँ वो इतनी दूरी से आई हुई थी और मेरा पूरा परिवार एकत्र था, मैंने रविवार को उनके साथ शामिल होना इनकार कर दिया। मेरी पत्नी के साथ भी ऐसा ही था। यदि उनके भतीजों की रविवार को शादी हुई तो वो उन शादियों में नहीं गई। जब ऐसा दो बार, तीन बार या चार बार या इस तरह से होता गया तो उन्होंने इस बात को पहचाना। उन्होंने सोचा कि वो रविवार को किसी भी समारोह में शामिल नहीं हो सकती है। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने उन पर सताव करना छोड़ दिया। बजाय इसके बाद में उन्होंने कहा कि विश्वासियों को उसी प्रकार का जीवन जीना चाहिए। यहां तक कि जब हम नए विश्वासी थे, हमने समझौता नहीं किया, हमने केवल पालन किया और परमेश्वर के वचन का अनुसरण किया। इसीलिए मैं तेजी से चौथे विश्वास के स्तर में जा पाया। और यहां तक कि जब मैं एक डीकन था, परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य प्रकट होते थे। कलीसिया की शुरुआत में परमेश्वर की सामर्थ्य मुझ पर उतरी कि मृतक जी उठे, अंधे देखने लगे और गूंगे बोलने लगे। वे जिनको अंतिम स्तर का कैंसर था और जो व्हील चेयर पर थे, वे उठ खड़े हुए और चलने लग गए। वे जो बांझ थे, वो बच्चा पैदा कर पाए जब उन्होंने प्रार्थनाओं को ग्रहण किया। यातायात की दुर्घटना के बाद टूटी हड्डियां जुड़ गई। ये चीजें कलीसिया की शुरुआत से ही प्रकट हुई। और उस वक्त सर्दियों में वे कोयले की अंगीठियां जलाया करते थे, इसीलिए सर्दियों में गैस के जहर से बहुत से लोग मर जाते थे। वे जो गैस के प्रभाव में बहुत समय तक रहते थे या पूरी रात भर, वो टैक्सी में या दूसरे लोगों के द्वारा चर्च में लाए जाते थे। हालांकि लंबा समय हो चुका था जबकि वो बेहोश पड़े हुए थे, लेकिन मेरे पास आने के बाद मैंने उनके लिए प्रार्थना की और मैं देखता था कि कितना लंबा समय लगता था। ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगते थे। उनका शरीर पूरा ठंडा होता था बेहोशी के कारण, लेकिन 2 ही मिनट में वे होश में आ जाते थे और सामान्य हो जाते थे। मैं देखता था कि कितना लंबा समय इसमें लगता था, 2 ही मिनट के बाद वे सामान्य हो जाते थे और ना ही उनके कोई दुष्प्रभाव होते थे। आप में से यहां पर ऐसे बहुत से हैं जो मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा वापस जिन्होंने जीवन प्राप्त किया। पास्टर छे वो भी प्रार्थनाओं के द्वारा चंगे हुए। क्या कोई दुष्प्रभाव है उनपे? वो लगभग मर चुके थे लेकिन जीवित हो उठे। उस बात के लिए धन्यवादी होकर उनकी पत्नी अभी भी स्वयं सेविका का कार्य मेरे घर पर करती है शुक्रवार को, केवल उस अनुग्रह के लिए धन्यवादी होकर। और साथ ही साथ आप सब जानते हैं कि सीनियर डिकनेस इन डुखिम 3री डिग्री तक वो जल चुकी थी। लगभग उनका पूरा शरीर चंगा हो गया। परमेश्वर की सामर्थ्य मुझ पर थी क्योंकि मैं संपूर्ण आत्मा में आ चुका था। मैंने इस कलीसिया की शुरुआत संपूर्ण आत्मा में आने के बाद शुरू की। प्रिय श्रोतागण, वे जो पास्टर्स है और कार्यकर्ता है, वे जो विश्वासियों की देखरेख करते हैं, उन्हें हमेशा उन सदस्यों पर ध्यान देना चाहिए जो पहले और दूसरे विश्वास के स्तर पर होते हैं। लेकिन एक चीज के बारे में आपको सावधान रहना चाहिए, जब आप कमजोर विश्वासियों को सम्मति देते हैं। रोमियो 12:3 के आज के पढ़े हुए पाठ में कहता है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबोध के साथ अपने को समझे। जैसा कहा गया है, जब आप सम्मति देते हैं या उनके घर में सभाएं करते हैं, तो आपको उनके विश्वास के परिमाण के अनुसार उन्हें सम्मति देनी है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए ऐसा कोई नया विश्वासी है जो रविवार को केवल सुबह की सभा में आता है और दोपहर बाद अपनी दुकान खोलता है। यदि आप उसे ये कहेंगे कि अगर आप संपूर्ण विश्राम दिन को पवित्र नहीं मानोगे तो आपका उद्धार नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? संयोगवश वह एक ऐसे व्यक्ति में बदल सकता है जो संपूर्ण विश्राम दिन को पवित्र मानता हो, लेकिन ज्यादा संभावना यह है कि उसे बुरा लग सकता है, तो यहां तक कि रविवार की सुबह की सभा में भी नहीं आएगा, ये सोचते हुए कि मसीह होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी उनके पास अपनी दुकान को रविवार को बंद करने का विश्वास नहीं है कि वे आराधनाओं में आएं, इसीलिए आपको उन पर दबाव नहीं डालना चाहिए, उनका विश्वास बढ़ना चाहिए क्योंकि वह अभी पहले और दूसरे विश्वास के स्तर पर ही है। यद्यपि वो उस स्थिति में मर भी जाएं तो भी उनका उद्धार होगा। क्योंकि उनके पास केवल छोटे बच्चे का विश्वास था, इसलिए वे बचाए जाएंगे। लेकिन यदि वो जन जिसका विश्वास तीसरे स्तर का है, जिसे संपूर्ण विश्राम दिन को पवित्र मानना चाहिए था, यदि वह विश्राम दिन को पवित्र नहीं मानता है तो परमेश्वर माफ नहीं करेगा, लेकिन पहले स्तर में परमेश्वर उसे माफ करेगा और दूसरे स्तर में परमेश्वर उसे परामर्श देगा अलग अलग तरीकों से, लेकिन सजा उस व्यक्ति के ऊपर नहीं आएगी। लेकिन तीसरे स्तर पर होकर के यदि कोई व्यक्ति विश्राम दिन को तोड़ता है तो परमेश्वर कुछ और नहीं करेगा, उस व्यक्ति से अपना मुख मोड़ लेगा। ये इसलिए क्योंकि यह व्यक्ति जानबूझकर पाप कर रहा है। यदि कोई चौथे या पांचवें स्तर पर है तो वह विश्राम दिन को तोड़ने के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता, इसलिए हमें उनके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पहला कुरिन्थियों 3:2 में प्रेरित पौलुस ने कमजोर विश्वासियों से कहा, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको खा ना सकते थे, वरन अब भी नहीं खा सकते हो। उन्हें दूध देने का मतलब है कि वे छोटे शिशु है। नए जन्मे शिशु वो केवल दूध पीते हैं, वे है जो पहले विश्वास के स्तर पर है। यदि आप उन पर दबाव डालते हैं जो पहले विश्वास के स्तर पर है कि वो काम करे जो तीसरे विश्वास के स्तर की है, तो फिर वो उसको पचा नहीं पाएंगे और वे ठोकर खा बैठेंगे। कुछ लोगों के लिए जब आप उन्हें चर्च में लाते हैं और उन्हें चर्च में पंजीकृत करते हैं, तो भी लगातार आपको उन्हें रविवार को उनके घर से चर्च लाना है। हो सकता है वे कुछ महीनों के लिए चर्च आएं और फिर छोड़ दें, तो फिर आप उनके घर जा सकते हैं, उनमें विश्वास उत्पन्न कर सकते हैं, वापस चर्च में आप उन्हें ला सकते हैं, और 2 या 3 बार इसे दोहराने के बाद आपको थकना नहीं चाहिए, आपको त्यागना नहीं चाहिए, अपने आप को मुड़कर आपको देखना चाहिए, आदि में आपका विश्वास कैसा था। यद्यपि आप उस प्रकार नहीं थे शुरुआत में, लेकिन बहुत से लोग उस तरह से कार्य कर सकते हैं, इसलिए आपको उन्हें समझना है, उनके घर जाना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है, विश्वास उत्पन्न करना है और उनके लिए उपवास करना है। पिछली बार एक शाखा कलिसिया के एक सेवक ने मुझे पत्र लिखा ये कहते हुए कि उसकी कलिसिया में एक विश्वासी है। कुछ महीनों तक ये सदस्य चर्च में आता है और फिर आना छोड़ देता है, इसलिए ये पास्टर उसके घर जाता है और उसके बाद वो फिर चर्च आता है। लेकिन कुछ समय के बाद उस व्यक्ति ने कहा कि उसके लिए बहुत मुश्किल था चर्च आना, इसलिए वह चर्च छोड़ के चला गया और उस पास्टर को बड़ी हताशा हुई और इसलिए उसने उसे छोड़ देने के बारे में सोचा। लेकिन जब उसने चरवाहे के बारे में सोचा तो उसने सोचा कि मेरे सीनियर पास्टर किसी भी आत्मा को नहीं छोड़ते हैं, इस मामले में उसने क्या किया होगा। उसने अपना मन बदला और फिर से वह उस सदस्य के घर गया। हालांकि वो गांव में रहता था, काफी दूर था। जब वह उसके घर गया तो उसने उस पास्टर का स्वागत किया। पहले वो ये कहता था कि चर्च बहुत दूर है और उसे वहां आना पसंद नहीं था और उसके कारण वो अब चर्च में नहीं आएगा। लेकिन अब जब यह पास्टर उसके घर गया तो वो सदस्य उस पास्टर को घर आते देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि उसने महान चीज का एहसास किया। हाँ, विश्वासियों को पालना बढ़ाना आसान नहीं है जो दूध पी रहे हो कि वो फिर नरम खाना खाएं और फिर कठोर खाना खाएं, लेकिन आपको प्रेम, धीरज और विश्वास के साथ उन्हें बड़ा करना है। आपने अपने बच्चों को भी उसी तरह से पाला बड़ा किया। क्या होगा यदि आप एक छोटे बच्चे को चावल या मीट खिलाएं जो केवल दूध पीता हो? यहाँ तक कि हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम उसे अच्छा खाना खिला रहे हैं उस बच्चे को उसके जीवन के लिए, लेकिन उसका जीवन मुश्किल में आ सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको उन्हें त्यागना है या छोड़ देना है, उन नए विश्वासियों को जो विश्राम दिन को पवित्र नहीं मानते हैं। आपको उसे अवसर और समय देना है कि वह समझे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। आप उन्हें कह सकते हैं कि परमेश्वर कितना आनंदित होता है जब हम उचित विश्राम दिन को मानते हैं और कैसे हम आत्मिक और शारीरिक आशीष पा सकते हैं विश्राम दिन को पवित्र मानने के द्वारा उन्हें गवाहियां देते हुए इस तरह से आप उनमें विश्वास उत्पन्न कर सकते हैं और उन्हें ताकत दे सकते हैं ताकि वो अपने विश्वास से कार्य करें। बीमारियों के साथ भी ऐसा ही है। जब एक नया विश्वासी जिसके पास पर्याप्त विश्वास नहीं होता है यदि वह बीमार हो जाए तो फिर डॉक्टर के पास जाने से आप उन्हें नहीं रोक सकते ये कहते हुए कि आप किसी भी बीमारी से प्रार्थना से चंगे हो जाएंगे। हमारे पास बहुत सी गवाहियां और असंख्य ऐसे मामले हैं हमारे चर्च में, इसीलिए उनके द्वारा आप उनमें विश्वास उत्पन्न कर सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं कि वे अपने विश्वास से परमेश्वर के सम्मुख आएं। लेकिन यदि वह अपना विश्वास नहीं दिखाते तो दूसरों को उन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। और इसके अलावा जब आपके घर में सभाएं होती हैं या फिर सम्मति देते हैं आप या मिशन का काम करते हैं, आपको सब कुछ केवल अपने ही विश्वास से नहीं करना चाहिए वरन आपको दूसरे लोगों के विश्वास का परिमाण का भी ध्यान देना चाहिए। इसलिए आपको उनकी मदद करनी चाहिए जिनका विश्वास कमजोर है कि वे परमेश्वर के प्रेम का एहसास करें और स्वर्गीय राज्य की उत्कंठा रखें ताकि वे परिपूर्णता से तीसरे विश्वास के स्तर की ओर दौड़ पाएं। तो फिर किस प्रकार के स्वर्गीय निवास स्थान उनके लिए तैयार है जो दूसरे विश्वास के स्तर पर है, इसके विषय में मैं अगले सत्र में आपको बताऊंगा। आइए इस संदेश का निष्कर्ष मैं आपको दूंगा। प्रिय श्रोताओं, पहले और दूसरे स्तर का विश्वास वो सबसे आधारित विश्वास के स्तर है। यदि आप इन विश्वास के परिमाणों से उद्धार पाते हैं तो फिर जिसे शर्मनाक उद्धार कहा जाता है आप उसे प्राप्त करते हैं। पहले विश्वास के स्तर में होने के द्वारा आप शर्मनाक उद्धार प्राप्त करेंगे। दूसरे स्तर में आप पहले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, क्योंकि शर्मनाक उद्धार से आप मुश्किल से ऊपर आ पाए हैं। उन्होंने यहां तक कि वो पाप भी दूर नहीं किए जो उन्होंने क्रियाओं में किए, परमेश्वर के वचन को जानने के बावजूद भी। पहले विश्वास के स्तर में होने के द्वारा आप शर्मनाक उद्धार प्राप्त करेंगे। दूसरे स्तर में आप पहले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। इब्रानियों 12 अध्याय 14 पद कहता है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। अब आप आत्मा के बारे में सीख रहे हैं। आप स्वर्ग और नर्क जानते हैं। आप जानते हैं कि यह आयत ऐसा क्यों कहती है। आप जानते हैं कि यद्यपि आप स्वर्ग में भी जाए तो भी आप प्रभु को नहीं देख पाएंगे। परमेश्वर का वचन जैसा है वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उन्होंने वो पाप भी दूर नहीं किए हैं जो क्रियाओं में किए जाते हैं। तो तमाम लोगों के साथ मेल मिलाप की तो बात ही छोड़िए, पवित्रीकरण की तो बात ही छोड़िए, इसलिए वे प्रभु के मुख को नहीं देख पाएंगे। और साथ ही साथ जब वे दूसरे विश्वासियों को देखते हैं जिन्होंने पापों को परिश्रम पूर्वक दूर किया लेकिन वे स्वयं से अपने विश्वासी जीवन में सुस्त रहे, तो उन्हें देखकर वे हताश हो गए, शर्मसार हो गए। हालांकि अभी आप इस धरती पर नहीं समझ पाएंगे कि यह कितना शर्मनाक और निराशाजनक है, लेकिन एक बार जब आपकी आत्मा आपके शरीर को छोड़ जाएगी, आत्मिक क्षेत्र में जाएगी, तो आप महसूस करेंगे कि इस जीवन में आपने कितना शर्मनाक मसीह जीवन जिया है। और केवल उज्ज्वलता को देखकर आप जान जाएंगे। आप उन विश्वासियों को नहीं देख पाएंगे जो एक उज्ज्वल ज्योति में होंगे। यद्यपि वे आपके अपने ही बच्चे या अपने ही माता पिता क्यों ना हो, आप उन्हें देख नहीं पाएंगे क्योंकि आप बहुत शर्म से भरे होंगे। परमेश्वर प्रकटीकरण पर नहीं वरन अंदरूनी हृदय पर देखता है, और विश्वास बिना कर्म के हुए मरा हुआ विश्वास है। यहां तक कि वे भी जिन्होंने अपना मसीह जीवन केवल कुछ ही महीनों पहले शुरू किया या कुछ ही सालों पहले शुरू किया, वे तेजी से तीसरे विश्वास के स्तर में बढ़ सकते हैं यदि वे परिश्रम से वचनों को सुने और अभ्यास करें। वे जो एक परिश्रम पूर्वक मसीह जीवन इस प्रकार से जीते हैं वे पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे और अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर पाएंगे और सब चीजों में संपन्न हो जाएंगे। उनकी गवाहियां रुकेगी नहीं। वे जो अपने पापों को दूर नहीं करते यदि भी उन्होंने बहुत समय पहले प्रभु को ग्रहण भी किया तो भी उनके पास बहुत सी चीजें गवाही देने के लिए नहीं होगी और वे अच्छे से पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन सकते। लेकिन वो जो यहां तक कि लंबे समय से मसीह ना भी हो वो पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं, अगुवाई पा सकते हैं यदि वे पालन करें जो कुछ वो सुनते हैं। वे बहुत सी आत्मिक चीजों का अनुभव करेंगे। मेरे अनुभव में पहले विश्वास के स्तर में मैं कुछ नहीं जानता था, इसलिए मैंने पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुना। लेकिन दूसरे स्तर से मैंने पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना शुरू किया और परमेश्वर ने भी मुझे प्रशिक्षित किया कि कैसे पवित्र आत्मा की आवाज सुनी जाए। ये उस समय के दौरान था जब मैं नया विश्वासी था। वे जो परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं वे पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं। वे जो पालन करते हैं वे परमेश्वर के वचनों को वैसे ही सुनेंगे जैसे है और आमीन के साथ उन्हें ग्रहण करेंगे, चाहे वो प्रचारक पास्टर हो, सेल लीडर हो या सेमिनारी का कोई विद्यार्थी हो। आप अपने विचारों को सम्मिलित नहीं करेंगे और परमेश्वर के वचनों को छानेंगे नहीं। वे जो पालन करते हैं आप और भी अधिक पवित्र आत्मा की आवाज को सुन पाएंगे, यहाँ तक कि शारीरिक तौर पर भी। यदि छोटा बच्चा अगर पालन करता है और बड़े बच्चे के समान अपने माता पिता को खुश करता है तो वह अपने माता पिता से उमड़ता हुआ प्रेम पाएगा। उसी प्रकार से यदि भी किसी का विश्वास छोटा ही क्यों ना हो, यदि वह अपने विश्वास से पार करते हुए विश्वास की क्रियाओं को दिखाता है तो परमेश्वर उनसे आनंदित होगा और साफ तौर पर उसे प्रमाण दिखाएगा कि वह उसे प्रेम रखता है। इसलिए आप नए विश्वासियों से बहुत सी गवाहियां सुनते हुए नए नए चर्च में होते हैं, लेकिन वो बीमारियों से चंगे हो जाते हैं या फिर वो उत्तर प्राप्त करते हैं। वे लोग हमेशा जो कुछ मांगते हैं उत्तर प्राप्त करते हैं। वे नए विश्वासी हैं, लेकिन वे कहते हैं कि वो अपनी तमाम प्रार्थनाओं के उत्तर प्राप्त करते हैं। वे पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं। तमाम प्रकार की आराधना सभा में आना उन्हें आनंद लगता है और विश्वासियों की संगति को देखना, सेल ग्रुप सभा में परमेश्वर की स्तुति करने में वे आनंद महसूस करते हैं। वे परमेश्वर के वचनों को परिश्रम पूर्वक सुनने की कोशिश करते हैं। वे उन चीजों को करने की कोशिश करते हैं जो चौथे विश्वास के स्तर पर है, इसलिए वे उनके अनुसार उत्तर प्राप्त करते हैं। लेकिन वे हर वक्त उत्तर प्राप्त नहीं करते। 2 या 3 महीने के बाद आप उन्हें देखिए, उनकी गवाहियां गायब हो जाती है। क्यों है ऐसा? ये अच्छा होता कि अगर वो उस परिपूर्णता को हर वक्त बनाए रखते, लेकिन परीक्षाओं और आजमाइशों में जब वे वचनों के अनुसार नहीं चलते, जब वे वचन का पालन नहीं करते कुछ बात के कारण, तो वे अनुग्रह खो बैठते हैं। फिर वे चौथे स्तर के उन कामों को नहीं कर पाते हैं, वे वापस पहले स्तर में आ जाते हैं। इसलिए उस वक्त के बाद वे अपने तमाम प्रार्थनाओं के उत्तर प्राप्त नहीं करते। मुझे आशा है कि आप परिश्रम पूर्वक परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे और सीखेंगे, अपने हृदय और क्रियाओं के द्वारा उसका अभ्यास करेंगे। ऐसा करने के द्वारा आपका विश्वास उस स्तर में पहुंचने पाए जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो और आप परमेश्वर के द्वारा इस धरती पर प्रेम पाने के गवाह बनो और स्वर्ग के राज्य में भी। प्रभु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाई और बहनों पर रखे जो यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनके तमाम बीमार और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके, उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित जला दीजिए। तमाम संक्रामक रोग, जुखाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से सुरक्षा दीजिए। उन्हें तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़े के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और आंख के रोगों से वे चंगे हो जाएं। तमाम प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाए। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठे, चले और वे कूदे। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें और अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभाव को ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो। तमाम प्रकार की नशे की लत से और पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मृतक कोशिकाओं, उत्तकों और तंत्रिकाओं को फिर से ठीक कीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, बुरी सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हो। ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। वे भले स्वस्थ में बने रहे जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से। अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। पिछले सत्र को जारी रखते हुए मैं आपको दूसरे विश्वास के स्तर के बारे में बताऊंगा। जैसे हम नए जन्मे शिशु का पंजीकरण स्थानीय सरकारी कार्यालय में करते हैं, उसी प्रकार से जब कोई प्रभु को ग्रहण करता है और बचाया जाता है, उसका नाम जीवन की पुस्तक में स्वर्ग में लिख लिया जाता है। तो जब वह परमेश्वर के वचनों को और अधिक सुनता है, वह एहसास करता है कि उसे सत्य के अनुसार जीवन बिताना है और अब वह वचन के अनुसार जो कुछ उसने सीखा है जीवन जीने की कोशिश करता है। यह दूसरे स्तर की शुरुआत है। दूसरे विश्वास के स्तर में आप परमेश्वर के वचनानुसार जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी तरह से आप उसे अभ्यास नहीं कर सकते। तो किस प्रकार के स्वर्गीय निवास स्थान वे लोग प्राप्त करेंगे जो दूसरे विश्वास के स्तर पर है? दूसरे विश्वास के स्तर में वे पहले स्वर्ग के राज्य में होंगे और पहले स्वर्ग के राज्य में उन्हें कम से कम व्यक्तिगत घर दिए जाएंगे, एक ताज दिया जाएगा और कुछ प्रतिफल दिए जाएंगे।